بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے سزاوار حمد وہ معبود جس کی طاعت میں سب ہیں سر بسجود. شکر اس کا ہو کس زباں سے ادا، اس نے کیا کیا نہ کچھ کیا پیدا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلام عرض کرتا ہوں تمام ناظرین محترم کی خدمت میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے خیریت اور عافیت سے ہوں گے. یہ مشعل راہ ہے جو پیر کے روز آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس ہفتے بھی توفیق ہوئی کہ ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ پروگرام لے کر کے. آج ایک نہایت اہم موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہے اور واقف ہیں اس بات سے کہ آج کل جو ہماری گفتگو ہے اس پروگرام میں وہ اس صحیفہ سجادیہ کے آئینے میں ہوتی ہے، جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے. آج جس دعا کا ہم نے انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے، وہ امام سجاد علیہ السلام کی 24ویں دعا ہے جو والدین کے سلسلے میں ہے. والدین کے سلسلے میں امام سجاد کیا کہتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں اللہ سے، کیا مانگتے ہیں اس سے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت اہم موضوع ہے، بڑی اہم دعا ہے، بہت خوبصورت اس میں مطالب ہیں جس کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے اس دعا میں. اس کو ہم جانیں گے اپنے مہمان کی زبانی. الحمدللہ آج بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عدیل اصغر کاظمی صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ناظرین کی خدمت میں خالصانہ سلام عرض کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو بحسن خوب انشاءاللہ اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کر سکیں
انشاءاللہ. بہرحال والدین کا تعلق ان ہستیوں سے ہے کہ جس کے سلسلے میں سنگین فرائض اور وظائف اللہ نے ہمارے کاندھوں پر رکھے ہیں. قرآن کریم میں جہاں پر اپنا ذکر کیا اس کے فوراً بعد اسی سے ملا کر کے والدین کا ذکر کیا. یہی ایک مثال اگر ہم لے لیں تو یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کتنا سنگین اور حساس اور کتنا سنجیدہ موضوع ہے یہ، جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو ہم اس موضوع پر کرتے ہیں، 24ویں دعا امام سجاد علیہ السلام کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اجازت دیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز. آئیے ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے جیسا کہ بتایا کہ 24ویں دعا امام سجاد کی ہے صحیفہ سجادیہ میں، جو آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اور موضوع ہے. یہ دعا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے والدین کے حوالے سے. اس میں کیا کہا ہے، کیا مانگا ہے اللہ سے، کیا باتیں ہیں جن کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کریں گے جناب مولانا عدیل کاظمی صاحب. سب سے پہلے ایک اشارہ ہو جائے، میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا، اس کے اجمالی خاکے کی طرف کیا کیا ہے اس دعا میں.
جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ دعا والدین کے سلسلے میں ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمائی ہے. اس دعا میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اس کے بعد پھر اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے اوپر والدین کے خواہشات اور والدین کے جذبات کو ترجیح دے، اور اسی طریقے سے والدین کے بارے میں ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھے. اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ والدین نے اگر کبھی اپنی اولاد کے سلسلے میں کچھ خطائیں کی ہوں، مثال کے طور پر عالم تربیت میں، ان کے بچپنے میں، تو بہرحال انسان اس کو ہمیشہ یاد نہ رکھے بلکہ اس سے درگزر کر جائے، عفو درگزر کو اپنا شعار بنائے. اسی طریقے سے اگر انسان نے والدین کے سلسلے میں کچھ کوتاہی کی ہے اب تک، اور ان کے سلسلے میں لغزشیں کی ہیں، ان کے سلسلے میں گستاخی کی ہے، تو اس سے دستبردار ہو جائے اور ان کوتاہیوں کو وہ ان کی بھرپائی کرے کسی نہ کسی طریقے سے. اسی طریقے سے والدین نے جو زحمتیں کی ہیں انسان کی تربیت کے سلسلے میں، اس کو بڑا بڑا کرنے کے سلسلے میں، اس کو ایک انسان بنانے کے سلسلے میں، ان کا وہ ہمیشہ ذکر کرتا رہے. اور حقوق والدین کی ادائیگی سے متعلق بھی اس دعا میں مطالب پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انسان والدین کا عاق بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ انسان کو اپنی دعاؤں میں اور اپنے نیک کاموں میں بھی اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جن باتوں کا تذکرہ ہوا ہے اس دعا میں، وہ بہرحال شاید میرے لیے تو نہیں ہے، وہ یہ کہ انسان اس بات کی آرزو رکھے اور اس بات کی تمنا کرے और खुदा से दुआ करे कि वो जन्नत में अपने वालिदैन के साथ रहे और वालिदैन भी उसके जन्नत में जाएं। तो ये एक जमाली तसव्वुर है जो इस दुआ ने हमें दिया है। इंशाल्लाह आगे इस सिलसिले में आपके
इंशाल्लाह।
सामने अर्ज़
अच्छा,
किया
ये
जाएगा।
जो सरसरी नज़र आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया और हम भी अगर डालते हैं इस दुआ पर, तो इसे महसूस होता है कि ये दुआ ज़्यादातर खुद हमारे बारे में है। उनवान तो इस दुआ का ये है कि वालिदैन के सिलसिले में दुआ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, लेकिन इसका रुख ज़्यादातर हम देखते हैं खुद अपनी तरफ है। ये क्या मतलब है इसका?
देखिए, वालिदैन यकीनन जो भी इस मंजिल पर हैं, जो अफराद भी, जो बहरहाल जिनके औलाद हैं, और बहरहाल अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद की भी औलाद हैं, तो वो इस मंजिल पर होते हैं कि वो अपनी औलाद से किसी चीज़ की तलब नहीं रखते, किसी भी चीज़ की तलब नहीं रखते। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि वालिदैन कोशिश ये करते हैं कि मरते दम तक अपनी औलाद के लिए कहीं ना किसी सूरत में काम आते रहें। और उसके बरखिलाफ़ औलाद आमतौर से ऐसी होती है कि औलाद हमेशा, यानी आमतौर से ऐसा देखने में आता है कि वो कुछ ना कुछ तलब करते रहते हैं कि अब ये दे दीजिए, अब वो दे दीजिए, अब ऐसा कर दीजिए, अब उससे ऐसा कह दीजिए। मुख्तलिफ मसाइल हैं, कभी कौली मसाइल होते हैं, ज़बानी मसाइल होते हैं, कभी इज़्ज़त व आबरू के मसाइल होते हैं, कभी माली मसाइल होते हैं, कभी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जिसमें वालिदैन की तरफ झुकाव रहता है। तो मुसलसल ये मसला है। वालिदैन अगर कुछ ना भी दे पाए तो वो अपने बच्चों के लिए दुआएं तो ज़रूर करते हैं, दुआ ज़रूर करते हैं, चाहे औलाद कितनी ही नालायक क्यों ना हो, ना और औलाद कितनी ही नाकारा क्यों ना हो, वालिदैन फिर भी अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। तो यहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जह किया है कि वालिदैन अपना फ़र्ज़ कभी नहीं भूलते हैं, तुम्हारे ऊपर भी कुछ फ़राइज़ हैं,
सही,
तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए कि वालिदैन के सिलसिले में तुम्हारे ऊपर भी कुछ फ़राइज़ हैं जिन्हें तुम्हें अदा करना है। और इनको अदा करना है तो ज़ाहिर है कि जब तक फ़राइज़ से इंसान आशना नहीं हो जाएगा और उसे पता नहीं चल जाएगा कि उसके फ़राइज़ क्या हैं, उनके वज़ायफ़ क्या हैं, उसे क्या करना चाहिए, उस वक्त तक वो अदा कैसे करेगा। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये दुआ हमारे सामने रखी, और इस दुआ के ज़रिए से हमें ये हमारी ये रहनुमाई की है कि हमें वालिदैन के सिलसिले में क्या करना चाहिए।
अब आते हैं फ़क़रात की तरफ। क्या मांगा है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने? एक बेहतर तौर पर कहें कि क्या कहा है इमाम ने अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के बाद?
अल्लाह के इस ख़ास बंदे ने बहुत ही ख़ास अल्फाज रखे हैं वालिदैन के सिलसिले में दुआ के लिए। आपने यहाँ फरमाया, वख़्सुसिल्लाहुम्मा वालिदैय बिलकरामति लदैक वस्सलात मिनक।
दुआ भी सलावात से शुरू होती
दुआ
है।
सलावात से शुरू है ज़ाहिर है, और वहाँ पर भी हज़रत रसूल और उनकी आले पाक पर सलाम व सलावात के बाद उनके लिए भी दुरूद व सलाम व रहमत और बरकात की दुआ की गई है, जहाँ पर आपने फरमाया, वख़्सुस हुम बे अफ़ज़ल सलावातिका व रहमतिका व बरकातिका व सलामिक। ये सब अहले बैत तहरीन अलैहिस्सलाम के लिए। फिर उसके बाद वालिदैन के बारे में फरमाया, वख़्सुसिल्लाहुम्मा वालिदैय बिलकरामति लदैक व सलात मिनक। ए अल्लाह, मेरे माँ और बाप को अपने नज़दीक करामत और बुजुर्गी इनायत फरमा, अपने नज़दीक, और अपनी जानिब से उनके ऊपर दुरूद सलाम भेज, दुरूद सलाम भेज। इस बात से यानी ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है कम से कम कि हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वालिदैन के सिलसिले में बेहतरीन से बेहतरीन दुआएं करे। एक बहुत अहम ये वजीफ़ा है और फ़र्ज़ है इंसान का कि अपने वालिदैन के सिलसिले में दुआएं करे। जैसे कोई भी इंसान मिसाल के तौर पर अगर उसके बच्चे हैं, औलाद हैं, भाई बहन हैं वगैरह, उनके लिए दुआ करता है, दोस्तों के लिए दुआ करता है, उनसे बढ़ चढ़ कर उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने वालिदैन के सिलसिले में दुआ करे, और कम से कम दुआओं में तो उनको फरामोश न करे, न भुलाए, चाहे वालिदैन उसके हयात हों चाहे हयात ना हों, इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर फिर भी दुआओं में उनको न भुलाए। इसलिए कि खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में भी जहाँ अपनी इबादत का जिक्र किया है और अपनी इबादत के साथ साथ इंसान को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि खुदा के ज़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक न बनाओ।
सही,
वहीं पर इस बात का भी जिक्र किया है कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, एहसान करो, अच्छा सलूक रखो। तो अब आप देखिए कि जो इंसान अपने वालिदैन के सिलसिले में दुआ करता है, बहरहाल ये भी नेकी का ही एक मिसाक है और एक हिस्सा है कि इंसान अपने वालिदैन के सिलसिले में दुआ कर रहा है। इसीलिए बहुत, यानी मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अलबत्ता इसी दुआ के साए में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात की तरफ इशारा दिया है कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि अपने वालिदैन को हुकूक़ को अदा करो, उनके सिलसिले में जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करो, उनके सिलसिले में जो तुम्हारे फ़राइज़ हैं उनका तुम्हें इल्म हो जाए, तो खुदा से दुआ करो कि तुम्हें वो ऐसी कुव्वत और ऐसी फहम अता करे, तुम्हें वो ऐसा इदराक अता करे, तुम्हें ऐसी समझ अता करे जिसकी बुनियाद पर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि वालिदैन के हुकूक को कैसे अदा करना
उनके
चाहिए,
हुकूक हैं क्या,
उनके
उनके
हुकूक हैं
फराइज।
क्या, फ़राइज़ क्या है उनके सिलसिले में। इसीलिए यहाँ देखिए कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आले फरमाने की अर्ज़ किया खुदा की बारगाह में, और फिर अर्ज़ किया कि वालहिमनी इल्म मा यजिबुलहुमा अलैया इल्हामा, ए अल्लाह मेरे ऊपर इल्हाम कर। किस चीज़ का इल्हाम? इल्म मा यजिबुलहुमा अलैया, हर उस चीज़ का इल्हाम कर के जो उन दोनों के सिलसिले में मेरे ऊपर वाजिब है,
सही,
वालिदैन के सिलसिले में मेरे ऊपर वाजिब है। इल्हाम हर किसी पर नहीं होता, हर किसी पर इल्हाम नहीं होता। इल्हाम एक, अगर मैं अलबत्ता यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे नाज़रीन बहरहाल इसके सिलसिले में क्या तसव्वुर रखते होंगे, लेकिन उलमा ने इस बात को लिखा है कि इल्हाम वही की एक किस्म है। वही, अलबत्ता वो वही जो पैगंबरों पर होती थी वो अलग एक कैफियत है, मगर इल्हाम भी गोया खुदावंद मुताल अपने बंदों पर ख़ास इनायत करता है, उनके दिल के अंदर कोई चीज़ डाल देता है। कि हम अपनी आम जिंदगी में भी ऐसा देखने में आता है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं, एकदम से दिल के अंदर एक चीज़ हमारे आती है और हम उस चीज़ की बुनियाद पर, उस पॉइंट की बुनियाद पर, उस नुक्ते की बुनियाद पर मुनसरिफ हो जाते हैं,
रुख बदल लेते
रुख
हैं।
बदल लेते हैं,
सही,
या बरअक्स हम कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन एकदम से हमारे दिल में एक चीज़ आती है और उसकी बुनियाद पर फौरन जाते हैं कि
हम
उस
कदम
उनका
आगे
और
बढ़ाते
उसका
हैं।
फ़ायदा हमें मिलता है,
सही,
या जो नुकसान हमें मिलने वाला था उससे हम बच जाते हैं। तो ये दर हकीकत खुदावंद मुताल का इल्हाम होता है। तो
इजाज़त दें, माफ़
हमने
कीजिएगा आदिल साहब, इजाज़त दें तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू रोकते हैं। बात ये हो रही है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक मुतालबा रख रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, एक दरख्वास्त कर रहे हैं, एक दुआ कर रहे हैं कि खुदाया मुझे उन फ़राइज़ और उन वज़ाइफ से आशना कर जो वालिदैन के सिलसिले में मेरी गर्दन पर हैं और मेरे कंधों पर हैं, एक तरह से इल्हाम कर मुझे उनसे आशना कर। इसकी मज़ीद तौज़ीह हम चाहेंगे अपने मोहतरम मेहमान से। इजाज़त दें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आते हैं आपके पास। आइए नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं उन हज़रात के लिए, उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया है अपना, मैं बता दूं कि हमारी गुफ्तगू का उनवान है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 24वीं दुआ है सईफ़े कामिला या सईफ़े सज्जादिया में, जो वालिदैन के सिलसिले में। इस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मौलाना अदील असगर काज़मी साहब कबला। तो जनाब, इल्हाम की बात थी कि आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं कि खुदाया मेरे ऊपर इल्हाम कर उन फ़राइज़ को, उन वज़ाइफ़ को जो वालिदैन के सिलसिले में है। जी
और न सिर्फ इल्हाम कर बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इससे आगे बढ़कर के ये तलब किया कि अल्लाह सुम्मस्तामिलनी बेमा तुल्हिमुनी मिन हो, कि जो कुछ तुम मेरे दिल में डाल रहा है, जो इल्म तू मुझे अता कर रहा है कि वालिदैन के सिलसिले में मेरे ये फ़राइज़ हैं, ये वजीफ़े हैं, तो फिर मुझे उन फ़राइज़ को अदा करने में भी हिम्मत इनायत कर, ऐसी तौफीक दे कि मैं इल्म खाली इल्म की हद तक न रह जाऊं बल्कि उस इल्म को अमली ज़िंदगी में भी अदा कर सकूं और उसको जारी कर सकूं। وَوَفِّقْنِي لِلنُّفُوذِ فِيمَا تُبَصِّرُنِي مِنْ عِلْمِهِ, اور مجھے ایسی توفیق دے کہ جو کچھ تو نے میرے دل میں ڈالا ہے میں اس کو انجام دے سکوں. حَتَّى لَا يَفُوتَنِي اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ عَلَّمْتَنِي, یہاں تک کہ جو کچھ تو نے میرے دل میں الہام کیا ہے ان کے فرائض کے سلسلے میں,
صحیح.
اس میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے فوت نہ ہونے پائے, چھوٹنے نہ پائے. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ والدین کی منزل خدا کے یہاں کتنی عظیم ہے, ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں موجود فضائل اور وظائف کو خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دکھا دے وہ راستہ. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ صرف راستہ نہ دکھا بلکہ ہمیں اس پر, اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے, اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہم تھک نہ جائیں. وَلَا تَثْقُلْ أَرْكَانِي عَنِ الْحُفُوفِ فِيمَا أَلْهَمْتَنِي, یہاں تک کہ میں احساس خستگی نہ کروں, میں تھکن کا احساس نہ کروں. ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سلسلے میں جو میرے فرض بنتا ہے, جو میرا وظیفہ بنتا ہے, میں اس کو ادا کرتے کرتے یہ سوچنے لگوں ارے میں کہاں پھنس گیا, ارے اب یہ میں کہاں تک اس کو انجام دوں. ایسا نہ ہو. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے جو اس دعا میں مختلف الفاظ کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے ہم تک پہنچانا چاہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے والدین کے سلسلے میں موجود وظیفوں کا علم ہو گیا اور ہم ان وظیفوں کو انجام دینے لگے, کہ یہ بھی اپنے آپ میں توفیق ہے, تو اس کے بعد یہ مرحلہ نہ آنے پائے کہ ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کب تک اور کیسے ہمیں ان وظائف کو انجام دینا پڑے گا, کب تک ہمیں ان فرائض کو انجام دینا پڑے گا. یہ مزید ایک توفیق ہے کہ اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہمارے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ہمیں چھٹکارا کب ملے گا. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ توفیق ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس کو طلب کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نے اس توفیق کو حاصل کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا تو اس کے جو مثبت نتائج ہیں وہ یقیناً خود ہمیں ہی ملیں گے. والدین کو تو شاید اس کے جو نتائج ملیں گے اس کو ملیں گے, لیکن اس کے زیادہ نتائج خود ہماری جانب اور ہماری ذات کی طرف پلٹتے ہیں. اس دعا میں جو یہ دعا امام سجاد علیہ السلام نے والدین کے سلسلے میں یہاں بیان فرمائی ہے, در حقیقت یہ دعا زیادہ ہم لوگوں کے لیے ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے
صحیح.
ہے, نہ کہ والدین کے فائدے کے لیے.
ایک مرحلہ ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہے جو ہر زندگی میں ہر فیملی میں ہے, جو جہاں پر والدین ہیں ان کے بچے ہیں, کچھ ان کی خواہشات ہیں, ان کے جذبات ہیں والدین کے, کچھ ہماری خواہشات ہیں ہمارے جذبات ہیں. ان کے درمیان ایک توازن کیسے برقرار کیا جائے, یا کس کو ترجیح دی جائے, کس کو ترجیح نہ دی جائے, کس کو کب ترجیح دی جائے, یہ ایک مسئلہ ہے. اس بارے میں میں چاہوں گا ذرا کچھ آپ گفتگو کریں.
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو والدین کی خواہشات, ان کے جذبات, ان کی تمنائیں, ان کی آرزوئیں, یہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر مسلم, اور ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں بچوں کی اور اولاد کی خواہشات, تمنائیں, ان کے جذبات, ان کے احساسات. ایک چیز تو یہ ہے کہ والدین کے جذبات اور ان کے احساسات کو کب تک ہم ترجیح دیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے, اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ترجیح دیں یا نہ دیں, ایک مسئلہ یہ ہے.
نہیں, کیا ہمیں اتنا حق ہے کہ کبھی ہم اپنے احساس, اپنے جذبات, اپنی خواہش کو ہم ترجیح دے سکیں؟ کبھی ہمیں ایسا حق ہے یا نہیں
جی,
ہے؟
تو یہ دو رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ کیا ان کے احساسات اور جذبات کو اپنے احساسات اور جذبات اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے اوپر ترجیح دیں, تو یقیناً ایسا ہے کہ ہمیں ترجیح دینی چاہیے. یہ کہ کہاں تک ترجیح دیں, تو اس کا جو اس کی جو حد ہے, اس کی جو آخری حد ہے, وہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں طے فرمائی ہے کہ جب تک کہ وہ شرک کا حکم نہ دیں, جب تک کہ وہ خدا کی بندگی سے نہ روکیں, جب تک کہ وہ کسی گناہ میں ڈالنے کا سبب نہ پڑے بنے, اس وقت تک ان کے احساسات, ان کے جذبات, ان کے حکم کی تعمیل لازمی ہے. یہ کہ ہم اپنے جذبات اور اپنے احساسات کے اوپر ترجیح دیں, بالکل. یہاں امام سجاد علیہ السلام نے एक बहुत अच्छा नुक्ता पॉइंट और एक ऐसा फैक्टर और सबब दिया है हमें कि जो अगर हमारे जहन में रहे तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारे जहन में कभी ये सोच आ ही नहीं सकती कि क्या मैं अपने वालिदैन के एहसास और उनके जज्बात को तरजीह दूँ, ये सवाल आ ही नहीं सकता। फिर वो क्या नुक्ता है ऐसा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअलनी अहाबुहुमा हैबत सुल्तान आसूफ, ए अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि जैसे कि गोया मैं ऐसा डरने वाला मुझे बना दे कि जैसे कि मैं किसी ऐसे हाकिम से डर रहा हूँ कि जो हाकिम अपनी मर्जी का मालिक है, किसी कानून का नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, कानून के दायरे में नहीं है, वो कानून से ऊपर है। जब ऐसा कोई हाकिम होगा कानून से ऊपर है तो फिर जाहिर है कि वो अपनी रियाया के सिलसिले में कब क्या फैसला कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब ऐसा कोई हाकिम होता है तो फिर उससे कैसे डरता है आदमी? दिन रात सोते जागते उठते बैठते आते जाते कहीं जाएगा तो डरेगा, घर में रहेगा तो डरेगा।
सही
तो मैं अपने वालिदैन के से ऐसे डरूं, अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन ऐसे ही हों या ऐसे हैं, ऐसे हाकिम जाबिर हाकिम जालिम, ऐसा नहीं,
कि जो फैसला कर दिया बस वो
ऐसा
होना है।
नहीं। वालिदैन से मैं ऐसा डरूं कि जैसे मैं किसी हाकिम से डर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, व अबर्रहुमा बिर्रल उम्मिर रऊफ, और मुझे ऐसा बना दे कि मैं उन दोनों के साथ ऐसी नेकी करूं कि जैसे कोई मेहरबान माँ अपने बच्चों के साथ करती है। तो दो चीजें हो गई ना, एक डर और एक शफकत, मेहरबानी, लुत्फ। तो जब ये दोनों चीजें मेरे जहन में आ जाएंगी, एक तरफ से खौफ है और एक तरफ से शफकत है, जब ये दोनों चीजें मेरे जहन में रहेंगी तो क्या कभी मैं ये सोच सकता हूँ कि अब मैं इनके एहसासात को अपने एहसासात के ऊपर तरजीह दूँ या ना दूँ? हरगिज़ नहीं। क्यों? इसलिए कि अब मैं बताऊँ, ये दोनों मिसालें अपनी जगह पर काबिले गौर हैं। कोई भी हाकिम जो ऐसा हो, क्या उसकी मर्जी के ऊपर किसी की मर्जी चल सकती है?
नहीं चल सकती।
हरगिज़ नहीं चल सकती। इसी तरीके से माँ जो मेहरबान है, क्या वो दूसरों अपने बच्चों की एहसासात और जज्बात को अपने ऊपर तरजीह नहीं देती है? माँ जो मेहरबान है, शफीक है, क्या वो अपने बच्चों के एहसासात को, अपने बच्चों के जज्बात को तरजीह नहीं देती अपने ऊपर?
देती है, बिल्कुल देती
यकीनन।
है, यकीन है।
अगर दुनिया में मेहरबानी की कोई मिसाल दी जा सकती है तो माँ की मिसाल दी जा सकती है।
तो माँ है, सही।
सर्दी हो या गर्मी, भूख हो या प्यास, जख्म हो या कुछ कैसी भी हालत हो, माँ अपने बच्चों को हर हाल में तरजीह देती है,
उनकी बात को
उनकी बात को
औलवियत देती है और तरजीह
औलवियत
देती है,
देती
सही।
है। खुद भूखी रहेगी उन्हें खिला। तो खुदावंद मुताल से हमने यही तलब किया कि हम वालिदैन की बात को तरजीह दें। क्यों दें? दो सबब हो सकते हैं, या तो हम उनको ऐसा हाकिम समझें कि जिसकी बात की कोई काट नहीं, या हम खुद ऐसे किरदार के बन जाएं कि जैसे एक शफीक और मेहरबान माँ होती है कि जो खुद जज्बात और एहसासात रखती है मगर अपने बच्चों के एहसासात को तरजीह देती है। तो जब ये दोनों एहसास हमारे दिल में आ जाएंगे तो इसके बाद फिर कभी हम ये नहीं सोच सकते कि आया हम अपने एहसासात और जज्बात को उनके
किसको
मुताबिक।
तरजीह दी जाए, किसको तरजीह ना दी जाए, उनके एहसास ज़्यादा मोहतरम है या हमारे एहसास ज़्यादा मोहतरम है, ये फिर सवाल ही बाकी नहीं रह जाएगा।
बाकी नहीं
सही।
रहेगा।
कुछ देर के लिए अदील काजमी साहब यहाँ पर रुकते हैं, इंशाल्लाह फिर एक ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, कुछ देर और हम आपके मेहमान हैं। जी नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ इसी तरीके से आप हमारा साथ दे रहे हैं। अब वक्त हो चला है आपके ईमेल्स पर एक नज़र डाली जाए। बहरहाल, जो आपकी तरफ से फीडबैक हमें मिलता है बहुत अहम है हमारे लिए, और आइंदा की जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे यहाँ उसमें बहुत ही अहम और मुफीद साबित होता है। जो कुछ आपके ख्यालात रहते हैं, आपके मशवरे रहते हैं, कभी कभी अच्छे सवालात आते हैं आपकी तरफ से, इससे हमें खुद एक तो हौसला भी मिलता है, दूसरे ये कि हमें मदद मिलती है कि हम आइंदा जो प्रोग्रामिंग करें उसको बेहतर तरीके से कर सकें। और कभी कभी ऐसा हमें महसूस होता है कि जो ईमेल्स हमारे पास आते हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, किस इलाके में क्या ज़रूरत है, किस पर ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, किस मौजू को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत है, ये सारी बातें हैं जो आपके ईमेल्स के ज़रिए से, आपके एसएमएस के ज़रिए से हमें मालूम होती हैं। अभी सब हम और आप सभी जानते हैं कि कुछ अरसे से जो चैनल्स हैं, बाज़ चैनल्स हैं ईरान की तरफ से जो नशर किए जाते हैं और वो हवा में जाते हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलें थीं। उसके बाद कुछ नाज़रीन को शिकायत थी कि वो आसानी से हमारे प्रोग्राम देख नहीं पाते। बहरहाल मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में कि ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसी मुश्किल है कि जिसका इख्तियार या हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कुछ मसाइल हमसे मरबूत नहीं होते हैं। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं कि कुछ अफराद हैं जिन जो नहीं चाहते हैं कि ये चैनल्स या इनके ज़रिए से जो बातें होती हैं वो लोगों तक पहुँचे, उस पर पाबंदी लगा देते हैं। बहरहाल मैं बहरहाल शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर से उन नाज़रीन का कि जो हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे चैनल को फॉलो करते थे, अभी तक वो टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे थे, अब उन्होंने देखना शुरू किया है ऑनलाइन और ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं। मैं खसूसी शुक्रगुजार हूँ इन अफराद का। गयूर साहब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने ये हमारे पास भेजा है, ईमेल भेजा है। वो कहते हैं कि मैं अभी तक आपके प्रोग्राम को, कुछ अरसे पहले तक मैं आपके प्रोग्राम को टीवी के ज़रिए से देखता था, लेकिन कुछ अरसे से मेरे साथ मुश्किल है और मैं आपके प्रोग्राम को टीवी के ज़रिए नहीं देख पाता हूँ और मैं ऑनलाइन आपके प्रोग्राम को देखता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके प्रोग्राम का, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। गयूर भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वाकई ज़हमत होती है आपको और ऑनलाइन देखने में अपनी खुद एक मुश्किल हैं, और जिस तरीके से जो लोग सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट से वाबस्ता हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी आसानी से टीवी से प्रोग्राम को देखा जा सकता है, इतनी आसानी से इंटरनेट पर नहीं देखा जा सकता। बहरहाल मैं गयूर भाई का खसूसी शुक्रगुजार हूँ, उन अफराद का खसूसी शुक्रगुजार हूँ जो ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दिन आए कि ये जो मसाइल हैं, जो मुश्किल हैं चैनल्स के हवाले से, वो लोगों तक नहीं पहुँचने देते हैं। बाज़ अफराद इन चैनल्स को लोगों तक नहीं पहुँचने देते हैं। ये दूरियाँ ख़त्म हों, ये जो बीच में बंधन हैं, जो रुकावटें हैं, ये दूर हों और आसानी के साथ आप हमारे प्रोग्राम्स को देख सकें। क़िबला आदिल साहब, मैं समझता हूँ 4-5 मिनट का वक्त हमारे पास होगा और आपकी बात ना तमाम।
जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो कलमात हमें इनायत फरमाए हैं उनके ज़रिए से हमारी वो बेहतरीन रहनुमाई की है, जिसकी बुनियाद पर हम अपने वालिदैन के सिलसिले में पाए जाने वाले हुकूक और फ़राइज़ को समझ सकते हैं, और उन्हीं की रहनुमाई की बुनियाद पर हम उन फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि इस तरीके से हम उनको अदा कर सकते हैं कि कभी हमें थकन का एहसास न होने पाए और किसी किस्म का मलाल ना होने पाए, और हम हमेशा उनकी खिदमत गुजारी के लिए आमादा और तैयार रहें। ये बहुत अहम बात है हमारी ज़िंदगी में कि बहरहाल कई बार ऐसा देखने में आता है कि इंसान अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा होता है, ज़ाहरी तौर पर खिदमत कर रहा होता है, लेकिन दिली तौर पर और कल्बी तौर पर उसका लगाव उस खिदमत में नहीं होता, बल्कि वो ये चाहता है कि किसी तरीके से बहरहाल वालिदैन की खिदमत से छुटकारा मिल जाए। लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि हमें वो पॉइंट्स दिए हैं जिसकी बुनियाद पर हम इस ख्याल से, और बल्कि फासिद ख्याल से और एक बहुत ही बेजा किस्म का ख्याल है ये, इससे हम दूर हो सकते हैं। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इसी बात को और इसी ख्याल को और मजबूत करने के लिए ये अल्फाज रखे हैं यहाँ पर कि वजअल ताअती लिवालिदय्या व बिर्री बिहिमा अकर्र लिआइनी मिन रक़दतिल वस्नान।
वाह,
वालिदैन की इताअत मेरे नज़दीक इतनी सुकून वाली करार दे, यानी मैं वालिदैन की इताअत करके, उनकी खिदमत करके ऐसा सुकून पाऊँ जैसे कि कोई इंसान मिसाल के तौर पर चंद रोज़ से न सोया हो और उसकी आँखों में नींद भरी हुई हो और बस वो एक ऐसे लम्हे का और एक ऐसे मरहले का इंतज़ार कर रहा हो कि उसे चंद घंटों के लिए सोने का मौका मिल जाए। तो कितना शीरीन लम्हा हो उसके लिए, कितनी मज़े की वो घड़ी होगी कि जब उसे ये इजाज़त मिल जाए कि हाँ आराम से सो सकता है।
उसकी
तो
आंखों को जो सुकून
वो
मिलेगा,
सुकून और उसके जहन को जो
आंखों की
सुकून
ठंडक।
मिलेगा, उसके बदन को जो सुकून मिलेगा, उसके दिल को जो ठंडक महसूस होगी, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमें ये रहनुमाई की कि हम खुदा से ऐसा शौक़ ऐसा ज़ौक़ तलब करें कि खुदा हमें तो ऐसा ज़ौक़ दे दे कि हमें जब भी वालिदैन की खिदमत करें तो हमें वो एहसास खुनकी हो, अपने दिल में चैन का एहसास हो कि हमने वालिदैन की इताअत की है, उनकी खिदमत की है। वअतलजा लिसदरी मिन शरबति ज़मआन, ये और भी उससे आगे की बात है कि मैं जो इताअत वालिदैन की करूं तो वो इताअत ऐसी ठंडक अता करने वाली हो, ऐसी खुनकी मुझे बख्शने वाली हो कि जैसे कोई बहुत एक अरसे से प्यासा इंसान हो, शदीद गर्मी है और उसमें उसको प्यास लग रही है, शदीद उसके जिस्म को पानी का एहसास है और शिद्दत प्यास से उसकी ज़बान ऐठी जा रही हो, ऐसे मौके पर उसको ठंडा पानी मिल जाए तो
कितना सुकून
कितना
मिलता है।
उसको सुकून मिलेगा, बल्कि वो सोचेगा कि अब जान में जान आई और ये जान अब इस बदन से जुदा होने वाली थी वो गोया वापस आ गई। तो अगर इस किस्म का एहसास हमें वालिदैन की खिदमत के सिलसिले में हो जाए, वालिदैन के साथ सिलसिले में हमारी नज़र ये हो जाए कि उनकी खिदमत उनकी इताअत हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारे लिए सुकून का बायस बनती है, हमारे लिए खुदा की बारगाह में हमारी मंजिले का हम मंजिल ऊंची होने का बायस बनती है, खुदा की बारगाह में हमारे आबरू की सबब का सबब बनती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि खा वालिदैन की इताअत हमारे लिए शीरी हो जाएगी, हमारे लिए नहायत खुशायंद हो जाएगी और हम दिलो जान से अपने वालिदैन की इताअत भी करेंगे, उनकी ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात के ऊपर तरजीह भी देंगे और हमेशा इस ताक में लगे रहेंगे कि कब मौका मिले कि हम फिर से वालिदैन की खिदमत कर सकें।
सही, वालिदैन के हवाले से हमारे जज्बात, हमारे एहसास, हमारी नफ्सियात कैसे हों, ये दुआ पढ़कर हमें अंदाज़ा होता है। और ये दुआ बखूबी एक तरह से हमारी तबीयत को, हमारे मिजाज को डेवलप करती है वालिदैन के सिलसिले में, कि किस तरह से सोचें, सोचने का अंदाज़ क्या हो, कैसी तबीयत हो, कैसे जज्बात हों, कैसे एहसास हों वालिदैन के जो सिलसिले में हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं उनको लेकर के। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू रुकती है, लेकिन आइंदा प्रोग्राम में भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वालिदैन के हवाले से इमाम सज्जाद की दुआ है, इस पर हम डिस्कस करेंगे आइंदा प्रोग्राम में भी। अदील साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, इससे ज़्यादा वक्त में गुंजाइश नहीं है जो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। इलाही इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें।